यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा वृंदावन जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 गोलोकेर प्रेमदम हरनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम के चौथे स्कंद 25वें अध्याय का 12वां श्लोक आज हम देखेंगे न साधु मे नेता सर्वा भूतले यावति पुरा कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये न साधु मे नितः सर्वा भूतले यावति पुरा कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये न साधु मे नितः सर्वा भूतले यावति पुरा कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये। कामान कामयमानोऽसौ सतस्योपपत्तये न साधु मे नेता सर्वा भूतले यावति पुरः कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत् मते न साधु मे नेता सर्वा भूतले यावति पुरः कामान कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये। शब्दशः अर्थ तात्पर्य तथा अनुवाद इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की न कभी नहीं, साधु अच्छा मैंने सोचा था, तहा उनको सर्वाह सब भूतले इस पृथ्वी पर यावति ही सभी प्रकार के पूरह आवास स्थान कामान इंद्रिय भोग के साधन कामयमान इच्छा करते हुए असौ वह राजा तस्य उसका उपपत्तये प्राप्त करने के लिए। राजा पुरंजन के इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वे सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। तात्पर्य, महान वैष्णव कवि श्रील विद्यापति का गीत है, तातल सैकेते वारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाजे। यहां पर समाज मित्रता तथा प्यार के से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई है। मरुस्थल यानी डेजर्ट। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ है। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्रों में आनंद भयो भास्यात अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया है, किंतु भगवान के अंश होने पर भी जीव पूर्ण भोग सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास से उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का भोग पूर्ण प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है, मृत्यु। इसी प्रकार मछली अपनी जीभ की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहां तक कि परम बलशाली हाथी भी हथिनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपने समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो सकता है, हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक वह उलझता जाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं नैतान् मनस्तव गतास्तु वैकुंठनाथ। संप्रियते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयशनार्थ तस्मिन् कथं तव गतिं निमिषानिदीना। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक पे चर्चा करने की पात्रता तो एक कण मात्र भी नहीं है, क्योंकि श्लोक बोल रहा है भौतिक इंद्र तृप्ति के बारे में, और एक व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति में पूरी तरह से ग्रासित है वह इस श्लोक पे बोलने के लायक नहीं। केवल एक ही पात्रता है कि सभी जो वैष्णवगण बैठे हैं और श्रील प्रभुपाद, उनकी कृपा से कुछ हम इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विशेषकर सभी वरिष्ठ भक्तों का मैं यहाँ पे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे पुरंजन उपाख्यान कहा गया है। ये पुरंजन उपाख्यान ना होके हमारा उपाख्यान है। नारद मुनि ने प्राचीन भरिषत राजा को यह उपाख्यान बताया जिससे कि उसे बुरा ना लगे, इसलिए वो किसी और राजा की तुलना देके अपने आप के बारे में बतला रहे थे, उनके बारे में बतला रहे थे। और वहीं जब हम पढ़ते हम सोचते हैं पुरंजन राजा का उपाख्यान है, लेकिन यह किसका उपाख्यान है? हमारे, हमें बुरा ना लगे इसलिए वहां ऐसा दिया गया है। तो इसीलिए परोक्षवाद का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो तत्व बताए हैं आज के श्लोक में, हम तात्पर्य पे सीमित रहेंगे। पूरे पुरंजन उपाख्यान का तो बहुत सारे भक्तों के मुखारविंद से हम अच्छे अच्छे पाठ पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम आज के तात्पर्य तक ही सीमित रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक तत्व दिया गया है, एक प्रिंसिपल दिया गया है। अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो यह प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज रियल सेटिस्फैक्शन, वास्तविक रूप से हमारे जीवन में समाधान कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा ही टेक्निकल है।
సిమిలర్లీ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ హూ హాస్ స్టేటెడ్ ఇన్ వేదాంత సూత్ర ఇస్ ఆనందమయో భ్యాసాత్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్. తో వాస్తవిక రూప్ సే దేఖా జాయే తో ఏక్ జీవాత్మా కా స్వభావ హై ఆనంద ప్రాప్త్ కర్నా జో హమ్ డివైస్ మే స్టార్టింగ్ మే బతా దేతే హై. స్టార్టింగ్ మే ప్రశ్న పూచ్తే హై కిన్ లోగ్ కో ఖుష్ హోనా హై, సభీ లోగ్ హాత్ ఊపర్ కర్తే హై కి నహీ, క్యోంకి క్యో యే హర్ ఏక్ జీవాత్మా కా క్యా హై, వాస్తవిక స్వరూప హై. క్యో? క్యోంకి భగవాన్ ఆనందమయ భ్యాసాత్ హై, భగవాన్ ఆనంద కే స్త్రోత్ హై, తో ఉన్కే పార్ట్ అండ్ పార్సల్ హోనే కే కారణ హమ్ భీ క్యా చాహతే హై, హమేషా ఆనంద చాహతే హై. Being part and parcel of Supreme Personality of Godhead, the living entity is also seeking complete enjoyment. Kaisa enjoyment? Complete. Hum thoda bahut enjoyment, thodi bahut indriya tripti nahi chahte. Hum kaisi indriya tripti chahte hain? Puri indriya tripti chahte hain. However, complete enjoyment cannot be achieved separate from Supreme Personality of Godhead. Lekin Bhagwan ke vyatirikt hum puri to sochiye mat, ज्यादा इंद्र तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकते. तो इस श्लोक पर चर्चा कर रहा था, बहुत दृष्टिकोण से इस पर चर्चा की जा सकती है, तो मैंने एक दृष्टिकोण लिया है. जैसा कि जो हैप्पीनेस के बारे में प्रभुपाद बतला रहे हैं, वो अलग अलग स्तर पे कैटेगराइजेशन उसका किया गया है. भगवद्गीता के चौदहवें अध्याय में हम देखते हैं कि तीन प्रकार के लोगों का कैटेगराइजेशन किया है कि कैसे वे आनंद प्राप्त करते हैं या नहीं. जो व्यक्ति सत्वगुण में है, रजोगुण में है और तमोगुण में है. तो जो सत्वगुण में है, वास्तविक रूप से समाधान और आनंद उसे ही प्राप्त होगा, ऐसा 14वें अध्याय में लिखा गया है. उसके बाद में लिखा गया है कि जो पैशन या फिर रजोगुण में कार्य करता है व्यक्ति, वह पूरी तरह से कर्मों में फंस जाएगा, कर्मों के बंधन से जकड़ जाएगा. ही विल बी बाउंड टू फ्रूटी एक्टिविटीज. और जो रजोगुण से भी नीचे तमोगुण में कार्य करते हैं, वे लोग आनंद का प्रयास करते, लेकिन आनंद का प्रयास किस में परिवर्तित होता है? मैडनेस, पागलपन में. तो इसीलिए तीन स्तरों पे हम देखेंगे कि अलग अलग स्तर पे सुख की व्याख्या अलग है, समाधान की व्याख्या अलग है. और हम देख सकते हैं इसे विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के संघर्ष में. हम सभी को पता है कि विश्वामित्र का जो लीनेज था, जो उसकी परंपरा थी, काफी महान परंपरा थी, लेकिन क्षत्रिय परंपरा थी. और साधारणतया राजा लोग कौन से गुण में रहते हैं? रजोगुण में. साधारणतया ऐसा नहीं कि सत्वगुण जीरो रहता है, वो तो पूरा इंटरट्वाइंड रहता है. तो प्रजापति के पुत्र थे कुश, कुश के पुत्र थे कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र थे गादी, और गादी के पुत्र थे विश्वामित्र मुनि. तो बहुत ही बड़े प्रजापति से सीधी उनकी वंश परंपरा चली आ रही थी. तो जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि एक बार अपने एक अक्षौहिणी सेना के साथ में जंगल में घूम रहे थे, तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए. और वशिष्ठ मुनि एक साधु, एक ब्राह्मण होने के कारण उनकी जो दिनचर्या थी, उनका जो रहनीमान था, उनकी जो रहन सहन थी, वह सत्वगुण में थी. और देखते हैं हम वहां पे जब जा रहे थे, तो वहां पे वो देखने लगे कि वहां पे कुछ साधु है जो सबसे सबसे ज्यादा क्या है, ऑस्टियर है, सबसे ज्यादा तपस्वी है. वे केवल हवा खा रहे थे, केवल क्या कर रहे थे? हवा ले रहे थे खाने के लिए. उसके बाद उससे नीचे थोड़े पतित लोग थे, वे लोग केवल पानी पी रहे थे और कुछ नहीं, पूरे जिंदगी भर केवल पानी पी के अपना आयुष्यमान बिता रहे थे. उससे और पतित लोग थे, वे थोड़े सूखे पत्ते खा रहे थे. और उससे और ज्यादा पतित लोग थे, सबसे पतित यानी डी ग्रेड. नहीं, हम कैटेगराइजेशन करते भक्तों का कभी कभी जब प्रीचिंग में करते, ए बी सी डी, तो डी ग्रेड के सबसे पतित आश्रम में जो थे उनके रहने वाले, वे केवल कुछ फ्रूट्स और रूट्स, कुछ फल इत्यादि खा रहे थे. सोचिए विश्वामित्र मुनि एकादशी के दिन इस्कॉन में आ जाएंगे तो क्या देखेंगे तो इसीलिए वहां पे जो उनका रहन सहन था वह कैसा था? बहुत ही सत्वगुण में था. उसके बाद उन्होंने देखा कि एक अक्षौहिणी सेना आने के बाद न जाने कहां से पूरे एक अक्षौहिणी सेना के लिए खाना पीना रहना जो कुछ उनकी सुविधाएं चाहिए थी, वह सब कुछ क्षण में अपने वशिष्ठ मुनि ने तैयार की. तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने पूछा क्या है भाई? तो उन्हें पता चला, वशिष्ठ मुनि ने स्वयं बताया कि शबला नाम की एक मेरे पास कामधेनु गाय है और वहां मेरी सभी इच्छाओं की पूर्तता करती है. विश्वामित्र मुनि बोले, अरे ये आपको साधु है, हवा खाने वाले, पानी पीने वाले कंदमूल का, आपको क्या आवश्यकता है इस गाय की, ये गाय हमें दे दीजिए, हम तो पूरे राज्य को पूरे सरकार को चलाते हैं, हमें बहुत आवश्यकता रहती है। वशिष्ठ मुनि बोले नहीं, गाय ने मेरा शरण लिया है इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। विश्वामित्र बोले आपको चाहे कितना धन दौलत चाहिए, कितना ही प्रोटेक्शन चाहिए, मैं पूरा दे दूंगा। नो, फंड कलेक्शन का टेंशन नहीं रहेगा सालों साल आपको पूरा मैं पूर्तता कर दूंगा। बोले नहीं, मैं नहीं दे सकता। पूरा दान पूरा चारों चीज इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि मना, वशिष्ठ मुनि मना किए। तो अंततः विश्वामित्र मुनि ने बलपूर्वक, कौन से गुण में है, मैं स्वभावता रजोगुण में, तो बलपूर्वक अपने आप को समाधान आनंद प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक शबला को किडनैप करके लेने का प्रयास किए। तो शबला तो कामधेनु का गया है, आपके मास्टर जैसे कि अपने रामानंद प्रभु बता रहे थे, पुराने जमाने में HMV नाम की कंपनी थी, है कि नहीं, HMV नाम, उसका लॉन्ग फॉर्म था हिज मास्टर्स वॉइस। अभी कल ही हम मेहंदेले की दुकान में गए थे, वहां पे उसका पुराना पोस्टर था HMV का। तो वहां पे एक बहुत बड़ा ग्रामोफोन का भोंगा लगाया हुआ है और उसके सामने कुत्ता बैठ के सुन रहा है हिज मास्टर्स वॉइस, कि कितना प्यार से एकदम कैसा गा रहा है, वो उसको लेना देना नहीं है, उसका मास्टर इसलिए सुन रहा है। तो शबला भी जब तक मास्टर कहेगा नहीं, अपने आप से कुछ उत्पत्ति नहीं कर सकती, इसलिए भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई। लेकिन वशिष्ठ मुनि सत्वगुण में थे, उन्होंने क्या कहा शबला को, शबला को कहा उन्होंने, नहीं तुल्यम बलम मयम राजा तू अद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियच्च पृथ्वीव्याम पति एवच। वे बोले शबला आप मुझसे ऐसा आग्रह ना करें कि मैं इनका प्रतिकार करूं, क्योंकि नहीं तुल्यम बलम मयम, एक क्षत्रिय का जो बल होता है मेरा बल उसके सामने क्षीण है। उसके अलावा एक जो क्षत्रिय है वो राजा है, बली राजा क्षत्रिय, क्षत्रिय भी है, और केवल राजा और क्षत्रिय न होके पृथ्व्याम च पतिम, पृथ्व्याम च पति मैंने पूरे पृथ्वी का क्या है वह पति है, इसलिए मैं उनका सामना नहीं करना चाहूंगा। तो शबला बड़ी मायूस हो गई, अरे आप तो मेरे स्वामी हो, आपने मेरा रक्षण करना चाहिए। तो वे शबला बहुत सुंदर श्लोक कहती है वशिष्ठ मुनि को, वे कहती है, न बलम क्षत्रियस्य आहु ब्राह्मणो बलवत्तर ब्रह्मन ब्रह्म बलम दिव्यम क्षत्रातु बलवत्तरम। वे कहती है न बलम क्षत्रियस्य आहु, ब्राह्मण है आप भूलो मत, और ब्राह्मण का जो बल है, ब्राह्मणो बलवत्तर, वह क्षत्रिय से कैसा है, कई एक प्रति से ज्यादा है, कई एक गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ब्राह्मण का बल कहां से आता है, ब्रह्मन ब्रह्म बलम दिव्यम, उसका बल कहां से आता है, ब्रह्म से, इसलिए उसका बल दिव्य है, और इसीलिए क्षत्रातु बलवत्तरम, इसलिए आप क्षत्रिय से क्या हो, ज्यादा शक्तिशाली हो। और फिर बहुत सारे श्लोकों में याचना करती है शबला, और फिर वशिष्ठ मुनि समझ जाते हैं कि मुझे रक्षा करनी चाहिए, और बहुत घमासान युद्ध होता है, हम जाएंगे ना युद्ध में, लेकिन विश्वामित्र मुनि परास्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मन ब्रह्म बलम दिव्यम, ब्रह्म के दिव्य बल के सामने उनका क्षत्रिय बल टिक नहीं पाता है। विश्वामित्र मुनि खिन्न हो जाते हैं, जैसा कि श्लोक में बताया गया है, कितना ही प्रयास करें आप इंद्रत्व प्राप्त करने का, लेकिन जब तक आप भगवान से कनेक्ट नहीं होते, संबंध प्रस्थापित नहीं करते, आप कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो हजारों हजारों साल तक विश्वामित्र मुनि तपस्या करते हैं, वापस युद्ध करने जाते हैं, वापस परास्त हो जाते हैं। अंततः कब समाधान प्राप्त होता है उन्हें, समाधान तभी प्राप्त होता है जब वे भगवान राम और लक्ष्मण की सेवा में उपस्थित हो जाते है कि नहीं। तो इसीलिए हमने देख सकते हैं कि रजोगुण या सत्वगुण भी हमें वास्तविक रूप से समाधान प्रदान नहीं कर सकता। नारद मुनि जब जंगल में तपस्या करने गए थे तो उनको भगवान का ध्यान करते हुए भगवान साक्षात रूप में दिखाई दिए, तो एक अनाउंसमेंट हुआ, आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई कि नारद मुनि बस ट्रेलर बंद, अभी आपको और आगे मूवी दिखेंगी नहीं। क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि आप में पात्रता नहीं है, पैसा नहीं है टिकट खरीदने का। क्या पात्रता नहीं है, आप में अभी भी भौतिक अशुद्धता है। अरे बाप रे, नारद मुनि अपने माँ का पूरा संग छोड़ के आए थे, ज्वाइन हो गए थे, कोई टेंशन नहीं था, जंगल में गए थे, ऐसा नहीं इस्कॉन मंदिर में रह रहे थे, जंगल में गए थे, पानी कंदमूल खा रहे थे, तो क्या उनके बीच में क्या थी, अशुद्धता थी। तो जीव गोस्वामी कहते हैं उनके मन में अशुद्धता थी कि वे जंगल के वातावरण से आसक्त हो गए थे, आजू बाजू की हरियाली से, आजू बाजू के नो शुद्ध पानी से वो क्या हो गए थे, थोड़ा बहुत आसक्त हो गए थे, सत्व गुण में वह आसक्त हो गए थे, इसलिए उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए चाहे हम रजोगुण में हो, तमोगुण की तो क्या कहने, रजोगुण में हो, सत्वगुण में हो, जब तक हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन नहीं करते तब तक हमें समाधान प्राप्त नहीं होगा। भक्तिनोद ठाकुर भी तीन कैटेगरीज देते हैं सुख के, और थोड़ा अलग देते हैं वे, भक्ति अलोका में कैटेगरी देते हैं। पहला कैटेगरी बोलते हैं वे कि व्यक्ति सुख करने के तीन स्तर है। सबसे पहला स्तर है स्वयं का शारीरिक स्तर, दूसरा स्तर है हेवनली हैप्पीनेस स्वर्गीय सुख, और तीसरा स्तर है भक्ति का सुख। यह तीन कैटेगराइजेशन सुख के किसने किए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर में। सबसे पहला कैटेगराइजेशन बोलते हैं कि जीवात्मा जीवन में सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है स्वयं के शरीर के स्तर पे। एक बार एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है और बोलता है, डॉक्टर साहब मैं 100 साल जीना चाहता हूं। डॉक्टर को क्या बोलता है, मैं 100 साल जीना चाहता हूं। डॉक्टर उसे पूछे, क्या आप सिगरेट स्मोक करते हो, बोलता नहीं। बोले, क्या आप बहुत ज्यादा खाते हो, बोले नहीं। क्या आप रात में लेट सोते हो, बोले नहीं। बोले, क्या आपका दूसरे स्त्रियों के साथ संबंध है, बोले नहीं। डॉक्टर पेशेंट के देखता है, 100 साल जीके करेगा क्या ये सब चीजें करता नहीं तो 100 साल जीके करेगा क्या। लोग अपने जीवन से इंद्रदुप्ति को निचोड़ना चाहते हैं भौतिक स्तर पे। हम सूरत में थे, वहां पे डुमस करके एक बीच है, गूगल उसको ड्यूमस बीच बोलता है, ऐसा लगा अमेरिका का बीच है क्या। डुमस करके बीच है, वहां पे हम गए थे, बोले कि हम वहां के लोकल भक्तों को बताए, दिखाओ भाई सूरत में आए हैं, कुछ देखा नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सब जगह, कुछ अच्छा चीज बताओ। बोले, हम बीच पे जाएंगे। थोड़ा सा वार्निंग दे दिया तो उन्होंने, बीच का एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन फिर भी हम सोचे ठीक है, थोड़ा गंदा बीच होएगा गिरगांव के जैसा। तो गए सब लोग हमारे भक्त के साथ, और जैसे बीच में गए वहां बीच का बी भी नहीं था, वहां पे पूरा दलदल के जैसा 2 किलोमीटर लंबा जमीन था और 2 किलोमीटर बाद एक समुन्द्र था, और वहां पे एक बहुत गंदा स्मेल आ रहा था क्योंकि वो दलदल था ना, तो सब मछलियां वछलियां जो मर जाती थी वो सड़ रही थी उधर। और वहां पे एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग वहां पे मौज मस्ती कर रहे थे। और क्या मौज मस्ती कर रहे थे, गंदे पानी में, गंदे बीच के सामने प्रयास कर रहे थे कि बीच का आनंद कैसे लूटा जाए, और कोई फायदा नहीं था वहां पे। ये न के न प्रकार है ना बीच का अनुभव, इसलिए बीच में चले गए, और वहां पे फिर सब अपना चौपटी टाइप स्टॉल लगे हुए, वहां पे लोग खा रहे, उससे अच्छा घर में बैठ के खा सकते हैं। दूसरा मैं गया था वहां पे, भक्तों ने बताया, एक भक्त हमारे क्रूज पे गए थे। क्रूज पता है ना आपको, बहुत बड़ा एकदम लग्जरियस शिप रहता है। तो भक्त बोले, चलो जाके आते हैं परिवार के साथ, सब भक्तों ने एक ग्रुप बनाया, वहां पे हरि कीर्तन करेंगे, बोले सब करेंगे, क्रूज पे चले गए। लेकिन क्रूज पे जाते जाते सिंगापुर में उन्हें सर्दी हो गया, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा। तो अभी क्रूज पे इन्फ्लुएंजा जब हो जाता है, सब कुछ उस क्रूज में बंद रहता है, आप सबको पता होगा बहुत बड़ी नाव है। तो उन क्रूज वालों का नियम रहता है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसे क्वारंटाइन कर देते हैं। क्वारंटाइन का मतलब उसे उसके रूम से बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं होती। तो ये भक्तों का पूरा क्रूज क्वारंटाइन में चला गया रूम के अंदर बंद करके, क्योंकि जब तक सर्दी, क्योंकि बाकी लोग को सर्दी हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा, तो पूरे जो 4000 लोग उस क्रूज पे, सभी को क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। भौतिक आनंद प्राप्त करने से हमारे मन को समाधान प्राप्त नहीं सकता। हाल फिलहाल ही मैं एयरफोर्स स्टेशन गया था, नाम नहीं लूंगा, थोड़ी गुहिया सूचना है। तो वहां पे सेमिनार देने गया था मैं, तो वहां पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट का टॉपिक दिया था मुझे। सोचिए इस्कॉन वालों को प्रायोरिटी मैनेजमेंट किसको देना है, एयरफोर्स वालों को देना है। उनकी जो समय सूचकता, समय बद्धता, टाइम मैनेजमेंट देख के मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे जब बुलाया गया तो मैं गया, मेरा ट्रेन 1 घंटा लेट था, वो तो मेरी गलती नहीं थी, ट्रेन लेट हो गया, तो उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है ट्रेन लेट है। उसके बाद मुझे कुछ घुमाने ले गए वहां, बालाजी धाम करके था, वहां पे घुमाने लेके गए। तो मैं 4:15 बजे पहुंचा वहां पे, 5:15 बजे। तो बोले हम 4:30 बजे निकलेंगे। तो मैंने सोचा 4:30 रहने, 4:30, 5:15, 5 बजे तक आराम से तैयार हो जाता हूं तो मैं स्नान वान कर रहा था, कपड़े पहन रहा था, 4:30 बज गए थे, वे लोग आ गए। बोले प्रभु 4:30 बज गए, हमको निकलना पड़ेगा। बोले हाँ 4:30 बज गए, हाँ बज गए, डॉट 4:30 बजे आ गए। तो घूम फिर के आए, रात में वहां पे जो कमांडर थे, मेन एयर कमांडर थे, उनके घर पे लंच डिनर रखा था, तो उनके यहां पे मुझे बुलाया गया कि 8 बजे वहां पे पहुंचना है। तो मैं सोचा अरे अभी 7:30 बज गए, 7:30 बजे घूम के आए, अभी 8 का 8:30 9 हो ही जाएगा, तो मैं वापस अपना कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, 8 बजे डायरेक्ट वो व्यक्ति आ गए, बोले डिनर का टाइम हो गया चलिए। दूसरे दिन वो व्यक्ति आके पूछता ब्रेकफास्ट कब लेंगे और क्या लेंगे, तो मैंने बोला 7:30 बजे लेक्चर है, 7 बजे ब्रेकफास्ट लेंगे हम, कुछ दूध फल लेके आइए। तो मैं वापस जब करते बैठा था, 6:55 को घंटी बजी गेस्ट हाउस की, वो उनका ब्रेकफास्ट लेके, सर आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद बोले आपको लेने आएगा 7:20 को आदमी आएगा, 7:25 को आपको यहां से निकलना है। तो जैसे ही मैंने देखा 7:20 को वो व्यक्ति अपना कार लेके वहां पे आ गया, तो मैं चलो निकलते हैं अभी, 7:20 हो गए निकलते, नहीं बोले सर हमको यहां से 7:25 को निकलना है, 5 मिनट वेट करते हैं। मैं बोला अरे बाप रे ये तो जरा डेंजरस है। तो 5 मिनट बैठा वो व्यक्ति, 7:25 को निकले, 7:27 को ऑडिटोरियम में पहुंचे, और एयरफोर्स में या आर्मी में लेक्चर देने का एक फायदा होता है, ऑडियंस किधर भाग नहीं सकता और टाइम पे आना ही पड़ता है। 7 बजे उनको असेंबल किया था, 7 बजे पूरे 250 एयरमैन और ऑफिसर्स वहां पे बैठे थे, और 7:30 को डॉट लेक्चर चालू किया। मैं पहली लेक्चर चालू से बोला सर कब खत्म करना है, एग्जैक्ट टाइम बताओ, हमारा थोड़ा लंबा जाता है। तो बोले नो एज यू लाइक, उसको भी समझ गया ये बंदा अपने टाइप का नहीं है, आपके हिसाब से खत्म कीजिए बोले। और उनको कौन से टॉपिक पे लेक्चर देना है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट में, बड़ा टेंशन में आ गया। तो मैंने टॉपिक को थोड़ा चेंज कर दिया रात में, ये सब देख के मैंने उसको लेसन फ्रॉम पेंसिल कर दिया। लेकिन इतना परफेक्ट लाइफ, और क्या परफेक्ट लाइफ होता है, क्यों इतना चौक रहना पड़ता है उनको, क्योंकि कुछ एम्युनेशन डिपो होते हैं वहां पे, उनको बड़े बड़े बम डिपोज करना पड़ता है, डेटोनेट करना पड़ता है, जो पुराने हो जाते हैं, उसका लाइफ रहता है 40-50 साल, उसके बाद उसको फोड़ना पड़ता है। तो वहां पे एक डेमो दिखा रहे थे वे, तो वहां पे 250 पाउंड के बड़े बड़े बॉम्ब थे, और 250 पाउंड के बॉम्ब को फोड़ना था, तो एक ऐसी वात टाइप वायर रहती है, तो उसको इग्नाइट करते हैं, और डिटेल्स में बताऊंगा नहीं, इट इज कॉन्फिडेंशियल, तो लाइट करते हैं और फिर भाग जाते हैं, 1.5 किलोमीटर भागते हैं ना आराम से, तो उनका टाइम रहता है, टाइमर रहता है, टाइमर। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा ये वात को वहां बॉम्ब तक पहुंचने के लिए, तो बोले इसको 7 मिनट लगेगा। बोलो केवल 7 मिनट, हाँ 7 मिनट में हमको गाड़ी में बैठना है, और फिर 1.5 किलोमीटर दूर एक शेल्टर है, हार्डन कॉन्क्रीट का बॉम्ब शेल्टर, वहां पे जाके वेट करना है। तो बोले 7 मिनट पहुंच जाएंगे, बोले सब कैलकुलेटेड, टेंशन मत लो। तो उन्होंने लगा दिया, सबको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी से गए 1.5 किलोमीटर लंबे शेल्टर में गए, 3 मिनट में शेल्टर में पहुंचे, 3 मिनट में कैलकुलेटेड था उनका, फिर 3 मिनट वहां पे वेट कर रहे, आधा सेकंड आधा मिनट बाकी था, तो उन्होंने सीटी बजाई, सब लोग शेल्टर के अंदर आ गए, और जैसे ही 7 मिनट हुआ, देखिए उनका मटेरियल कैलकुलेशन कितना चौक है, कितना अप टू डेट है, जैसे ही टाइमर पे 7 मिनट हुए, बूम, कितने दूर थे हम, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में मेरे सब कपड़े पूरी हवा से उड़ गए, शेल्टर के अंदर बाहर नहीं, और उसके जो शार्पनेल्स है वहां शार्पनेल जाते हैं 2 किलोमीटर ऊंचे हवा में, जो बॉम्ब के शार्पनेल रहते हैं ना स्टील के टुकड़े, 2 किलोमीटर ऊंचे हवा में जाते हैं, और फिर जोर से धड़ 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 1.5 किलोमीटर दूर गिरे हमारे ऊपर, यानी शेल्टर के ऊपर सब। तो ऐसा सेमिनार देने के बाद जब मैं उन बॉस से मिलने गया उनके ऑफिस में, तो वे बोल रहे थे आपने ज्यादा जोर डिसिप्लिन पे नहीं दिया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप लोग डिसिप्लिन, यानी हमारा रहता है ना 6 लेसन ऑफ पेंसिल, दैट यू शुड हियर योर ऑथोरिटी। तो मतलब सर मैं तो सोचा हूं कि मैं एयरफोर्स में हूं, हमको आपके उदाहरण देते हैं हमारे आश्रम में कि कैसे डिसिप्लिन करना चाहिए, तो मैं सोचा तो आपके तो खून में है, मैं क्या बोलूं डिसिप्लिन के बारे में। तो बोले आपका कहना तो सही है, रक्त में, लेकिन रक्त कभी कभी पतला हो जाता है बोले। तो बोले डिसिप्लिन धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, और हम बताने से उनको सुनना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, कोई बाहर का व्यक्ति अगर डिसिप्लिन के बारे में बताएगा तो वे ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सोचिए। तो मैं सोचा अरे वाह ये तो अच्छा है। तो फिर जब ऑफिसर का लेक्चर रखा था, फिर उसमें मैं फिर ज्यादा वही उदाहरण दिया, उनका ही उदाहरण उनको दे दिया कि बोले गड्ढा खोदने का उदाहरण, इधर को दो बंद, इधर को दो बंद। कहने का मतलब है इतना सब व्यवस्थित होने के बावजूद भी, सिस्टमेटिक होने के बावजूद भी, भौतिक दृष्टिकोण से उस ऑफिसर ने मुझे बताया कि सर ड्यूटी तो ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी के बाद हमें कुछ तो और करना चाहिए, नहीं तो समा 35 years इज वर्किंग। 35 साल की ड्यूटी के बाद वो क्या बोल रहा है, ड्यूटी तो ड्यूटी की जगह सही है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन उससे हमारे मन को पूरी तरह से समाधान प्राप्त नहीं होता। एक बार आईआईटी में बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे, मैं आईआईटी का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहां पे बहुत लोग पंखे को कपड़ा लेके लटक जाते थे, तो ऐसे 3-4-5 सुसाइड हो गए। आईआईटी के काउंसिल में बड़ी भगदड़ मच गई, बोले इतने लोग सुसाइड कर रहे, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी सोल्यूशन की कमिटी हुई, करोड़ रुपए खर्चा करने का निर्णय किया गया और उन्होंने एक प्रपोजल दिया। क्या सोल्यूशन निकला कि सभी रूम में से पंखे निकाल देंगे और एसी लगाए जाएंगे जिससे कि लटकने के लिए कुछ रहेगा नहीं लोगों के लिए तो भौतिक स्तर पे चाहे कुछ भी कर ले आप समाधान नहीं रहेंगे। रॉबिन विलियम्स और चार्ली चैपलिन बहुत बड़े लोगों को हंसाने वाले व्यक्ति थे, भौतिक स्तर पर बहुत हंसाते थे, जोक मारते थे। चार्ली चैपलिन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कभी कभी रोवन एटकिंसन को भी, जो मिस्टर बीन से, उसको भी बताया जाता है वो स्टेटमेंट। तो चार्ली चैपलिन कहे कि मुझे बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है, बारिश में चलना मुझे क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को दिखता नहीं कि मैं रो रहा हूं, नोबडी सीज दैट आई एम क्राइंग, इजंट इट। तो इसीलिए भौतिक स्तर पे चाहे कितना भी प्रयास कर ले हम समाधानी नहीं हो सकते। जिंदगी भर लोगों को हंसाया, करोड़ों अरबों रुपए अर्जन किए, लेकिन खुद अंदर से कैसे रह गए खोखले। रॉबिन विलियम्स ने तो सुसाइड किया, सोचिए, जिंदगी भर दूसरों को हंसाने वाले व्यक्ति ने क्या किया, सुसाइड किया। उसके व्यतिरिक्त कोई अगर भक्तों के संग में आ जाता है, एक तनिक भी सेवा कर देता है, तो चाहे वह कितना भी शारीरिक स्तर पे हो, निश्चित रूप से उसे समाधान प्राप्त होता है। सभी लोग को पता है बीटल्स ने कैसे मदद की प्रभुपाद को, इनफैक्ट प्रभुपाद जॉन लेनन के स्टेट में सबसे पहले गए, जॉर्ज हैरिसन के स्टेट में नहीं गए, तो जॉन लेनन के स्टेट में गए थे लंदन में प्रभुपाद, और वहां पे जॉन लेनन ने बहुत अच्छा आदर सत्कार किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जॉन लेनन पूरी तरह से भ्रमित हो गया, भक्ति मार्ग छोड़ दिया, भक्तों से विभक्त हो गया और बहुत ज्यादा क्रॉसली इंद्रियतृप्ति में लग गया। इनफैक्ट वहां पे अगर गए थे जॉन लेनन के इसमें, तो वहां पे पूरी तरह से अश्लील ऐसे चित्र लगाए थे उसके और उसके पत्नी के, और सब ब्रह्मचारी वहां रुक रहे थे, तो आंखें बंद करके नीचे से जाते थे। तो यहां जॉन लेनन अमेरिका में न्यूयॉर्क में रह रहा था, 69 स्ट्रीट पे रह रहा था वो, और हमारा मंदिर था 55th स्ट्रीट में मैनहट्टन में उस समय, और ये December 8, 1980 की बात है। वहां पे तीन ही भक्त रहते थे उस समय मैनहट्टन में, एक थे बकुला माताजी और दूसरे थे सुरोत्तम प्रभु, और ये दोनों अपनी एक पुत्री का जन्म हुआ था श्रृंगारा करके, तो उसे एक हॉस्पिटल में रूजवेल्ट हॉस्पिटल करके था वहां पे लेके जाने वाले थे 8 December 1980 को शाम को। तो अपने भक्तों के साथ, अपने बीवी के साथ गए क्लिनिक में, रूजवेल्ट हॉस्पिटल में, और वहां पे अपने लड़की को दिखा रहे थे, और उस समय 1980 की बात है, पैंट शर्ट नहीं पहनते थे भक्त बाहर, क्या पहनते थे, धोती कुर्ता साड़ी शेव्ड हेड तिलक, प्रॉपर ब्रह्मचारी टाइप ही अटायर रहता था। और जैसे ही वे डॉक्टर देख रहे थे उनके लड़की को, उसी समय एक नर्स भागी भागी बोले, इमरजेंसी इमरजेंसी, कृपया आइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर भागी दौड़ी गई, तो इन्हें सुरोत्तम प्रभु को भी लगा कौन सी इमरजेंसी है, वे भी उनके पीछे चले गए, भागे दौड़े, और देखा तो वहां जॉन लेनन को कोई व्यक्ति ने गोली मार दी थी, 79 स्ट्रीट पे क्या मार दी थी, गोली मार दी थी, और वहां पीठ के बल पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर में क्या था, खून बह रहा था। और उस समय उसकी पत्नी योको ओनो भी उसके साथ थी, एक मामले में सही था जॉन लेनन, लास्ट तक उसने योको ओनो को छोड़ा नहीं। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की। तो योको ओनो वहां पे थी और वह बहुत गहरी सांस ले रहा था, जॉन लेनन मरा नहीं था अभी, पूरी तरह से खून बह रहा था उसके शरीर से। और योको ओनो ने जब देखा कि सुरोत्तम प्रभु वहां पे आ गए, योको ओनो जोर से जॉन लेनन को बोली, जॉन हरे कृष्णा आर हियर, जॉन हरे कृष्णा यहीं पे आ गए हैं। और वहीं अंतिम वाक्य था, जॉन लेनन परलोक सिधार गए। श्रील प्रभुपाद की, देखिए कौन से स्थिति में, कौन से स्थिति में जॉन लेनन को हरे कृष्णा सुनने को मिला, जॉन लेनन हरे कृष्णा आर हियर। भौतिक दृष्टिकोण से हम समाधान नहीं हो सकते, यत कदाचित भगवान के भक्तों से कत ही कभी भी किधर भी संपर्क आ गया, तो निश्चित रूप से हमें पूरी तरह से समाधान प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में चिन्नाप्पा नायक, जो कन्नड़ा डिवोटी उनको पता रहेगा, चिन्नाप्पा नायक या पुरंदर दास का पहले का नाम था, तो वे भी बहुत ज्यादा कंजूस थे अपने भौतिक जीवन में तथा कथित। उनके पिताजी का हीरे जवाहरात का बिजनेस था और उनके पिताजी माताजी जल्दी मरने के कारण उन्हें वह इनहेरिटेंस में प्राप्त हुआ, तो वो बिजनेस में बहुत धनाढ्य थे, करोड़पति अरबोपति थे। उनका नाम श्रीनिवास भी था, श्रीनिवास चिनाप्पा, श्रीनिवास नायक। तो वे बहुत ज्यादा आसक्त थे अपने धन दौलत से। तो भगवान को पता था, अरे इसकी भक्ति तो छुपी हुई है, अभी प्रदर्शित नहीं हो रही। तो भगवान ने एक छोटे से नहीं, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बोले मैं इसका परीक्षा लेने जाता हूं। और गए उसके घर में और बोले कि हे चिनाप्पा जी, आप मुझे कृपया कुछ दान में दीजिए, मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार मुझे करना है। चिनाप्पा ने उन्हें देखा भी नहीं, ना चिनाप्पा नायक ने देखा भी नहीं, और बड़े कठिन शब्द कह के उनको बोला भाग जाओ यहां से, बिल्कुल भी दान मिलने वाला नहीं है। नहीं, कुछ लोग रहते हरे कृष्णा को देखे तो भाग जाओ। तो वहां पे गए, कुछ भी मिला नहीं, और चिनाप्पा भागे भागे अपने दुकान पे चले गए। लेकिन ब्राह्मण बड़े आतुर हो गए, जो कि भगवान थे स्वयं, उनकी पत्नी से याचना करने लगे कि पत्नी जी, आप तो स्त्री हो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से मृदु रहता है, सॉफ्ट रहता है, आप तो कृपा करके कुछ मुझे दीजिए, आपके पति तो निष्ठुर है, कंजूस है। तो उनकी पत्नी का हृदय पिघल जाता है और तुरंत अपने नाक से एक बहुत कीमती नोजरिंग नथनी उन ब्राह्मण को दे देती, जिसमें एक बहुत सुंदर हीरा है। बोले ये ले लीजिए, लेकिन कृपया करके एक चीज मत करना। क्या मत करना? मेरे पति को कत ही पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको ये दान दिया है, नहीं तो मेरा खैर नहीं। अभी भगवान भी किसी की परीक्षा लेना है तो बड़ी जोर से परीक्षा लेते हैं। वो ब्राह्मण उस रिंग को बेचने गए चिनाप्पा के ही दुकान में वहीं जाके उनको रिंग देना था, तो गए और बोले ये रिंग मुझे चाहिए, इसके बदले में पैसा चाहिए। अभी ये कंजूस व्यक्ति हर एक चीज गिन मोच के माप के रखता था, जैसे रिंग देखा उसे समझ गया ये रिंग में तो कुछ गड़बड़ है, कहां से मिली? बोले रिंग मुझे कुछ गृहस्थ ने दिया। बोले तो बोले रुको, बोले थोड़ी देर। तो उसने क्या किया, वह रिंग ली, समझ गया कि किसकी रिंग है, मेरे पत्नी की नथनी है। तो नथनी को उसने अपने सेफ में रखा और तुरंत वहां से भागा भागा घर पे आया। और जैसे ही घर पे आया, पत्नी ने देखा भगवान ने भी बहुत जोर से परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे मुझे, वो ब्राह्मण को भी इसकी दुकान में जाना था। और तुरंत उन्हें पता चल गया अभी मेरी कुछ खैर नहीं, अभी तो मैं गई। तो उन्होंने क्या किया, डिप्रेशन में एक कप लिया, उसमें पॉइजन डाला और पॉइजन को पी के अपना देह छोड़ने की तैयारी की। जैसे वो कप मुंह में लाके पीने वाली थी, वैसे उनके पत्नी ने देखा उस कप के अंदर, पॉइजन के अंदर उनकी नथनी थी। और ये भागे दौड़े चिनाप्पा नायक आए, बोले किधर है तेरी नथनी? तो तुरंत वो पॉइजन से कप से निकल, बोले ये मेरी नथनी है तुरंत बताया। तो ये देखा, बोले अरे ये तो आपकी नथनी है। तो उधर देखा, वो भी आपकी जैसी नथनी थी। तो इसने नथनी वापस दे दी अपने पत्नी को और भागे दौड़े वापस गया, वापस अपनी सेफ खोली। और जैसे सेफ खोली, वहां से नथनी गायब। यहां पे ब्राह्मण बोला पैसा, पैसा चाहिए? अरे नथनी गायब, पैसा किसका दू ये टेंशन में आ गया चिनाप्पा नायक। और थोड़ी देर सोचा, बोले ये तो कोई सादा चीज नहीं है, मैं 100% कह सकता हूं वो नथनी किसकी थी, मेरे पत्नी की थी। तो उन्हें लगा ये तो कुछ दाल में काला है। तो थोड़ा सा उन्हें मेडिटेट किया, फिर उन्हें पता चला कि ये जो सामने ब्राह्मण है वो कोई साधारण ब्राह्मण नौके कौन है, साक्षात श्रीनिवास भगवान है, साक्षात विट्ठल भगवान है, विट्ठल के भक्त थे वे। और फिर बहुत बड़े उनका पूरा रियलाइजेशन हो गया। हमारे जीवन में ऐसा कभी होता नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन आचार्यों के जीवन में होता है। तुरंत एक क्षण में पूरी तरह से उनकी चेतना, उनका भाव, उनकी आसक्ति सब कुछ चूर हो जाती है। और फिर सब कुछ छोड़ के वे पुरंदर दास बने और बहुत सुंदर पोएम लिखा है, हम शायद ही आधा ही बोल पाएंगे पूरा क्लास। तो उसमें लिखा है, कन्नड़ में पोएम है, कन्नड़ ड्यूटीज माइट बी नोइंग बेटर, लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है। हाउ कैन आई सर्व यू, पुरंदर दास भगवान को कह रहे कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं भगवान, मैं सोचता हूं कि आपके लिए पानी लो अभिषेक करने के लिए, अरे लेकिन आपके चरण कमलों से तो गंगा बहती है, मैं पानी से कैसे सेवा करूं आपको, हाउ कैन आई सर्व यू लॉर्ड। बाद में पुरंदरदास आगे कहते हैं, हाउ कैन आई सर्व यू लॉर्ड, मैं सोचता हूं कि आपके लिए सुमधुर गाना गाऊंगा, अरे लेकिन आपके सामने तो बड़े बड़े किंकर, गंधर्व और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त गा रहे हैं, मेरा गाना आपको कैसे प्रसन्न करेगा। हाउ कैन आई सर्व यू, चिनाप्पा ने पुरंदरदास कहते हैं, मैं सोचता हूं कि आपको दिया दिखा के आपकी पूजा करूंगा, लेकिन आपका जो इफलजन से आपकी कांति करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, मेरा दिया तो दिखेगा भी नहीं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। पुरंदरदास आगे कहते हैं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं भगवान, मैं सोचता हूं कुछ डोनेशन दे दूंगा, कुछ मेटल के सिक्के आपकी हुंडी में डाल दूंगा, आपकी सेवा करूंगा, अरे लक्ष्मी जी तो आपके सात स्थान विचरित करती है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। मैं सोचता हूं भगवान आपकी सेवा के लिए बहुत सुंदर बिछोना, गुलाब के पकड़िया डाल के, मखमल का बिछोना डाल के आपको सुलाऊंगा। अरे आप तो अनंत शेष के शरीर पे सोते हो, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। मैं सोचता हूं भगवान की पंखा लेके आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आपको तो 24/7/4 गरुड़ जी अपने पंखों से क्या कर रहे हैं, हवा लगा रहे हैं। पुरंदर दास कहते तो मैं कैसे सेवा करूं भगवान आपकी, कैसे सेवा करूं। सनक सनातन इत्यादि साधुओं ने बहुत सुंदर सुंदर रूप से आपका गुणगान किया है, यह सेवा मात्र मैं कर सकता हूं। कौन सी सेवा कर सकता हूं? उन्होंने किया हुआ गुणगान मैं आपके प्रसन्नता के लिए गा सकता हूं, और यही मेरी केवल सेवा, आप स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर मैं पूरे अपने अलग अलग गानों को उन्होंने लिखा। देखिए भौतिकवादी चिनप्पा नायक से पूरी तरह से अनासक्त, पूरी तरह से संतुष्ट, किसकी सेवा में? भगवान कृष्ण की सेवा में। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते शारीरिक स्तर पे अगर कोई रहेगा तो वो निश्चित रूप से समाधानी नहीं बन सकता, लेकिन भगवान से यत कदाचित संपर्क हो जाए तो भी वह क्या हो जाएगा? समाधानी हो जाएगा। दूसरा बताते हैं सोशल रिलेशनशिप, 2 मिनट है, 2 मिनट में करेंगे। सोशल रिलेशनशिप्स भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये हेवनली प्लेजर देते हैं। हेवनली प्लेजर का मतलब होता है स्वर्गीय सुख देते हैं। स्वर्गीय सुख का मतलब क्या होता है कि इंद्र तृप्ति से कई अधिक गुना। मैं डायलास में था तो वहां गृहस्थ के साथ में बहुत ज्यादा मेरा संवाद होता था, तो मैं उनको पूछा प्रभु जी आपके गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? तो वे कहे कि अरे आप लोग को लगता है, ज्यादातर भौतिकवादियों लोग लगता है कि गृहस्थ जीवन में सुख यानी सेक्स लाइफ होता है, मैथुन जीवन होता है, लेकिन मैं 100% कह सकता हूं कि मैथुन जीवन केवल एक बहुत इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटा सा पार्ट है एक गृहस्थ जीवन का। ज्यादा सुख गृहस्थ जीवन में किससे आता है? संबंधों के आदान प्रदान से, और इसीलिए उसे क्या कहा गया है? हेवनली सुख। उससे भी समाधान प्राप्त नहीं होता इस जीवन में। एक सुभाषित है, कन्यावरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधव कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। एक शादी होती है, शादी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से शादी अटेंड करने जाते हैं। कन्या शादी अटेंड कर रही है, वह वर में क्या देखती है? कन्या वरयते रूपम, कितना सुंदर होना चाहिए, कोई हीरो के जैसा होना चाहिए। बाद में माता वित्तम, माता क्या देखती है वर में? पैसा, अच्छा पैसा होना चाहिए, तो मेरे बेटी का कैसा ख्याल रखेगा नहीं। पिता बोलता केवल पैसा और रूप महत्वपूर्ण नहीं, पिता क्या देखते हैं? पिता श्रुतम, विद्वान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। बाद में बांधव कुलम इच्छन्ति, बांधव क्या देखते? अपने जात का होना चाहिए बाकी कुछ नहीं रहा चलेगा, हमारे कास्ट का होना चाहिए। कुलम, कुल देखते हैं। और बाकी जब सब लोग आते हैं ना शादी अटेंड करने के लिए, वे लोग क्या देखते हैं? मिष्टान्न मित्र जना, कितने टाइप के स्वीट्स है कितने टाइप के मिष्टान्न है, केवल वह देखने के लिए शादी में आते हैं। हर एक व्यक्ति का संबंध में क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? दृष्टिकोण होता है। तो इसीलिए हेवनली प्लेजर होने के बावजूद भी वह हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन वह संबंध अगर आध्यात्मिक तौर पर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें वास्तविक संबंध का आनंद प्राप्त होगा। एक बार लास्ट प्रभुपाद पास टाइम बता के हम अंत करेंगे, तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, वैसा कि प्रभु बताते हैं, तो वहां पे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद भगवदगीता में कहां गए अपीचे तो सुदुराचारो, कोई भक्त अगर आकस्मिक दुर्घटना से कोई पाप करता है तो उसे माफ कर देते भगवान, लेकिन अगर जान बुझ कर उसने पाप किया है तो वो माफ नहीं है। प्रभुपाद मेरा प्रश्न है कि किसे कह सकते हैं जान बुझ कर किया गया पाप? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड वेदर ही हैज डन सिन इंटेंशनली और एक्सीडेंटली? प्रभुपाद रुके और प्रभुपाद ने बहुत होपफुल ऐसा आंसर दिया जो कि हमारे जीवन में एक आशा का दीप हो सकता है। प्रभुपाद कहे इफ डिवोटी कम्स बैक इट इज एक्सीडेंटल। प्रभुपाद क्या बोले? इफ डिवोटी कम्स बैक इट इज एक्सीडेंटल। और प्रभुपाद केवल बोले ने, प्रभुपाद ने इसे पालन भी किया है। लॉस एंजलिस में 1972 की बात है, वहां पे देवर्षि नाम का बीटीजी डिस्ट्रीब्यूटर का टॉप बीटीजी डिस्ट्रीब्यूटर था, वहां कुछ जघन्य पाप किया और जघन्य पाप के कारण उसका फॉल डाउन हो गया। लॉस एंजलिस के टेंपल प्रेसिडेंट ने पूरा नोटिस लगाया, नोटिस बोर्ड पे लगाया, बोले इस भक्त को अभी मंदिर में एंट्री नहीं, इसे बिल्कुल भी मंदिर में आना अलाउड नहीं। देवर्षि प्रभु तो फिर वहां बेचारा लॉस एंजल्स में अलाउड नहीं, फिर सैन डिएगो गया, तब तो कोई ऐसा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, सैन डिएगो में जाने लग गया। तब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को आए, सॉरी लॉस एंजल्स आए, तो वहां पे ये सैन डिएगो में बंदा आ रहा था, तो वहां पे एक प्रभु जी ने भक्तदास प्रभु वो जप कर रहे थे, तो ये दिखा उनको देवर्षि प्रभु, तो बोले क्या हो गया आपको तो अलाउड नहीं आना। बोले हाँ लेकिन क्या करूं मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो बोले कुछ कर सकते हो क्या? बोले ठीक है प्रभुपाद अंदर है, आप जाके क्या हो प्रभुपाद से मिल के आओ। तो प्रभुपाद से मिलने गए तो प्रभुपाद को उन्होंने अपनी पूरी परिस्थिति बताया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और प्रभुपाद बोले इसलिए मुझे मंदिरों से क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, मुझे मंदिर में आला अलाउड नहीं है। प्रभुपाद बोले ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ ट्रेवल करो, यू कम विथ मी एंड ट्रेवल विथ मी, नो प्रॉब्लम। श्री प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद भागवतम की ताय गौर प्रेमानंदे।